ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 39 40 और 41। 40वां श्लोक लिखा है सामने, कृपया मेरे पीछे दोहराएं। इतिहासम एमं पुण्यम चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यम विष्णु भक्ताराम श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णु भक्ताराम श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। इतिहासम् इमं पुण्यं चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। इतिहासम् इमं पुण्यं चित्रकेतुः महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते। इतिहासम् इतिहास इमं यह है, पुण्यं परम पवित्र, चित्रकेतो चित्रकेतु का, महात्मनः परम भक्त, महात्म्यम महिमायुत, विष्णु भक्तानाम विष्णु के भक्तों का, श्रुत्वा सुनकर, बंधात जीवन के बंधन से, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे द्वारा ये चित्रकेतु महान भक्त महात्मा था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुनता हो तो श्रोता भी इस संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटना यथा भागवत पुराण का यह चित्रकेतु का इतिहास भक्तों तथा अन्य लोगों द्वारा गलत समझ लिया जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का इतिहास किसी भक्त के मुख से ही सुना जाए। भक्ति संबंधी या भगवान और भक्तों के संबंध में जो कुछ भी हो उसे भक्त से ही सुना जाए, किस व्यवसायिक वाचक से नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का भी यही कहना था कि श्रीमद् भागवत का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए। यह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, मनुष्य को चाहिए कि भागवत के कथनों को व्यवसायिक वाचकों से न सुने, अन्यथा उसका लाभ नहीं मिलेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उद्धरण करते हुए कठोर वर्जना की है कि अभक्तों के मुख से भगवान तथा भक्तों का चरित्र न सुना जाए। अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सपुरुषम यथा पय। अवैष्णव के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के होठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है। केवल प्रामाणिक भक्त ही अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें प्रभावित कर सकता है। 39वां श्लोक है, इसका भी अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं। हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृत्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बता दिया। और 41वां श्लोक है, जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर श्री भगवान का स्मरण करके चित्र केतु का इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला जाता है। हरे कृष्ण। चित्रकेतु महान भक्त था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इतिहास को सुनता हो तो श्रोता भी संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। चर्चा आ रही है महान भक्त के बारे में, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भक्त किसे कहते हैं। हम लोग सब रोज दसियों बार जो है भक्त 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 की चर्चा करते हैं, हम भक्त हैं, हम ये हैं, हम वो भक्त है, वो भक्त है, हम भक्त हैं। प्रश्न ये है कि भक्त की, जिसे महात्मा मीन्स महान भक्त की चर्चा हो रही है, महान आत्मा महात्मा अर्थात महान भक्त की चर्चा हो रही है, तो भक्त की श्रेणियां और जो महान आत्मा है, जो महान भक्त है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि हम उसको बोलें कि यस ही इज ए डिवोटी, शुद्ध भक्त है, महान भक्त है, अच्छा भक्त है, गुड डिवोटी, एडवांस डिवोटी, साधक। साधक मीन्स कि ही इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण भावनामृत में हौले 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 करके प्रैक्टिस कर रहा है। बट प्रश्न ये है कि हु इज महान भक्त। महान भक्त की परिभाषा क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये भक्त है और ये महान भक्त है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, दोनों में फर्क कैसे किया जाएगा। साधारण बहुत सारी क्वालिफिकेशन, भगवद गीता कितने लोगों ने ध्यान पूर्वक पढ़ी है, हाउ मेनी हैव फिनिश्ड इट, एक दो तीन, सारे भक्तों ने पढ़ी है, चाहे हाथ ना खड़ा करें, am I right? सभी ने पढ़ी। भक्त के 26 गुण हम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत में है लिखे हुए, हमने सबको बोर्ड में भी लिखा रहता है, हर जगह चर्चा होती है, 26 गुणों की चर्चा होती है। अभी हम उन 26 गुणों में न जाके हम भगवत गीता के संदर्भ में, भगवत गीता के आधार पर चर्चा करना चाहेंगे शॉर्ट में, कि भक्त जो है उसको क्या क्या गुण उसके जो है इसके अंदर परिलक्षित किए गए हैं, क्या क्या गुण इसके अंदर बताए गए हैं, कहां कहां बताए गए। एनीबडी कैन डिटेल कि भगवत गीता में भक्तों के गुण अर्थात जो प्योर डिवोटी है उसके गुणों की चर्चा कहां कहां हुई है, कहां कहां कहा गया है। भगवत गीता इज अ बेसिक साइंस, रूपात को पढ़िएगा ध्यान से, रूपात जो है दसियों जगह पर अपने ग्रंथों में परपट्स में लिखते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के लिए उसको, यदि आपका स्कूलिंग हो गया, स्कूलिंग होने का मतलब क्या है कि आपने स्कूल की क्लासेस को पास कर लिया है, दैट इज आज की तारीख में कौन सी स्कूल की क्लासेस, 12 क्लास तक, यही कहते हैं ना, 12th तक स्कूल है ना। अब लड़का जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ग्रेजुएशन कब खत्म होती है, जब वो बीएससी या बीए कर लेता है, जो भी उसकी बीटेक कर लिया है, बीए कर लिया है, बीसीए कर लिया वगैरह वगैरह, ग्रेजुएशन क्लासिफिक क्वालिफिकेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं जी आप, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद एक और ग्रेजुएशन कर रहा हूं जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कही गई है, एमए है, एमएससी है, एमटेक है, एमफिल है वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो स्कूलिंग है वो भगवद गीता है, जब तक भगवत गीता आपका आधार पक्का नहीं होगा तब तक आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दसियों रेफरेंस है, दसियों, एक नहीं है, दसियों रेफरेंस। जब आप स्कूलिंग कर लेते हैं तब आपको जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलती है, तो श्रीमद भागवतम जो है वो ग्रेजुएशन है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो चैतन्य चरितामृत जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, इट्स रियली डिफिकल्ट। मत लीला पढ़िएगा, सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिए गए हैं आसान नहीं है, मुश्किल है, टफ है। और फिर उसके बाद आता है पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आती है पीएचडी। तो पीएचडी क्या है, वो तो कुछ होना चाहिए ना, भौतिक संसार का मुकाबला जो है आध्यात्मिक संसार में किया जाए तो पीएचडी क्या है। तो जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने कहा है पीएचडी है कौन सा ग्रंथ, प्रभुपाद लीलामृत। बड़ी आसान लगती है, बड़ी इजी है, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, बड़ा आसान है, परंतु उसके मर्म को समझना बड़ा कठिन है। आंसू बहते हैं जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, आंसू बहते हैं। कभी ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट वॉल्यूम जो उसका है, जब पढ़ेंगे आप जो स्ट्रगल किया है प्रभुपाद ने, उसमें अगर आपके आंसू नहीं बहे तो आपको समझ में नहीं आई, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए उसको। तो यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि भक्त की परिभाषा, भक्त की क्वालिफिकेशंस या भक्त के बारे में चर्चा जो है वो कहां कहां कैसे उसके जो है गुण बताए गए, जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी, आप बताइए। नवे अध्याय के पूरे अध्याय में जो है भक्त के गुणों की चर्चा हुई है, बहुत बढ़िया। और 13.8 तो ज्ञान की चर्चा हो रही है, इस भक्त के अंदर ये ज्ञान के गुण होने चाहिए। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, ठीक, और गीता रहस्य कहते हैं उसको। पहला अध्याय इटसेल्फ भक्त की चर्चा करता, कंपैशन। अर्जुन कह रहा है कि मैं उसको क्षमा करने को तैयार हूं, किसको, जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया। वारणावत के लाक्षाग्रह में जलाया गया, भीम को विष दिया गया, छल से राज्य हर लिया गया, पत्नी को हर लिया गया, पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, उसके बाद अज्ञातवास, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, पर अज्ञातवास समाप्त होने से पहले फिर विराटनगर में युद्ध के ऊपर दुर्योधन अपनी सेनाएं लेके आ गया, फिर हमको जो है दोबारा से वो वनवास में और अज्ञातवास में डालना चाहता था, फिर कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया, हमने 5 गांव मांगे तो हमको 5 गांव देने से इनकार कर दिया। ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा करने को तैयार है, भक्त के गुण है, दिस क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिवोटी। दूसरा अध्याय पढ़ते हैं आप तो दूसरे अध्याय में चर्चा आती है, श्लोक संख्या 54 से प्रश्न स्टार्ट होता है और 71 तक ये चर्चा चलती है। क्या चर्चा है कि भक्त के गुण क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, वगैरह वगैरह। फिर चर्चा आती है, प्रभु जी ने कहा 13वें अध्याय के अंदर 8वें श्लोक से लेके और 12वें श्लोक तक, 11वें अध्याय में, 9वें अध्याय में चर्चा करी माता जी ने, 9वें अध्याय में चर्चा आ रही है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा 9वें अध्याय पे करेंगे। 12वें अध्याय में चर्चा आती है 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक, 14वें अध्याय में चर्चा आती है 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक, और 18वें अध्याय में चर्चा आती है 51वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक। ये सारी की सारी चर्चाएं जो है भक्त की क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करती है। पर आज जो है हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी 9वें अध्याय के अंदर, और उससे पहले प्रभुपाद के कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको एज सच पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि भक्त के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन क्या बताई, वो कृष्ण के किसी न किसी रूप में उसको चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन जो बताई गई है एक ही क्वालिफिकेशन है, ओनली वन, वो क्या है, सिंगल लाइन, एक वर्ड, अनन्य भाव, ठीक है, और प्रेमा भक्ति तो है, ठीक है, शुद्ध भक्त की एक क्वालिफिकेशन, जोर से बोलो, फिर जोर से बोलो, फिर जोर से बोलो, सरेंडर, एक वर्ड है उसके लिए, द वर्ड इज कि शुद्ध भक्त जो है कृष्ण के प्रति शरणागत होता है, इज 100% सरेंडर टू कृष्ण। अब जो सरेंडर है उसके लक्षण क्या है, क्या कैसे कहेंगे कि आप सरेंडर्ड है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षीय तति विश्वासो गुप्तत्व वर्णम तथा आत्मविक्षेप काव्य में सद्विद्या शरणागति, छह गुण होने चाहिए उसके अंदर, सिक्स सिम्टम्स। अगर भक्त के अंदर ये छह गुण हैं तो वो जो है कृष्ण के प्रति शरणागत है, नहीं तो शरणागत नहीं है, अर्थात वो शुद्ध भक्त नहीं, इज नॉट ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। आप भगवान के प्रति शरणागत हैं, आप भगवान की प्रेम, वही प्रभु जी ने कहा प्रेमा भक्ति, भक्ति के साथ प्रेमा क्यों लगाया, भक्ति का मतलब क्या होता है, व्हाट इज भक्ति, लेट्स टॉक ऑन दिस, भक्ति किसे कहते हैं, तो प्रेमा भक्ति क्या हुई, भक्ति का अर्थ क्या है, आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला, भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा, और फिर कह रहे हैं प्रेमा भक्ति, वाई प्रेमा भक्ति क्यों कह रहे हैं, इन प्रैक्टिस भाव भक्ति प्रेमा भक्ति, इन प्रैक्टिस क्या है, साधना, और उसके बाद भाव भक्ति क्या है, स्पॉन्टेनियस, अच्छा, और उसके बाद प्रेमा भक्ति। रूपा जी ने अपने पर्पस में लिखा है डिवोशनल सर्विस विद लव, डिवोशनल सर्विस का मतलब होता है भक्ति, अभी मैं आपको बताऊंगा, आई टेल यू हेयर व्हाट डज एक्चुअल प्रेमा भक्ति मीन्स, अभी जब नौवें अध्याय का 26वां श्लोक करेंगे तब आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन होगी कि प्रेमा भक्ति क्या है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूं आपको, माता जी ने घर के अंदर किचन में भगवान के लिए भोग तैयार करना, भोग तैयार हो रहा है पर कुड़कुड़ चालू है, कहां फंस गई, मनाना पड़ रहा है, शाम को घूमने जाना था, अब बीच में भोग फंस गया, खुशी मुश्किल से बना के भगवान को खिला तो दिया, थोड़ा सा प्रेम है, थोड़ा सा खिला रहे इसलिए प्रेम है, पर कैसा बन रहा है, मजबूरी में बन रहा, कंपल्शन है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी ने कहा था ना भगवान को खिला के खिलाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, खिलाना तो पड़ेगा ही, ये तो मजबूरी है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, मतलब आप जो है भगवान के लिए सेवा, भगवान की सेवा कर तो रहे हैं, डिवोशनल सर्विस में तो हैं, डिवोटी एज ए डिवोटी एक्ट तो कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस में हैं, परंतु आपका भगवान के प्रति प्रेम जो है वो परिलक्षित नहीं हो रहा, मजबूरी में प्रेम हो रहा है, मजबूरी में। दूसरी सिचुएशन ये है कि अब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा, भगवान के लिए ही बनना है, उन्हीं के लिए तैयार होना है, और खुशी खुशी बन रहा है, आनंद से बन रहा है, चैंटिंग भी चल रही है साथ साथ, मतलब भगवान का स्मरण भी हो रहा है, बन भी रहा है, और भगवान को कैसे सर्व करूंगा, कैसे सर्व करूंगी, कैसे बनाऊंगी, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, नमक कम ना हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी बातें एकदम दिमाग में, आपका भोग फिट है उस वक्त, और कोई चीज फिट नहीं है, भगवान फिट है और कोई फिट नहीं, स्मरण केवल भगवान का हो रहा है, और आप प्रेम पूर्वक बना रहे हैं उसको, प्रेम से बनाया, दोनों सिचुएशंस में है, एक में मजबूरी में बनाया है और दूसरे में भाव से बनाया है, भाव है भगवान के प्रति, प्रेम का भाव है, ऐसा भाव है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अच्छा अच्छा, आज पापड़ भी सेक लेती हूं, हालांकि पहले मूड नहीं था, पर प्रेम जागृत हुआ तो पापड़ भी आ गया है, चटनी भी बना लेती हूं, एक चीज और बना लेती हूं, मतलब पहले यह था मजबूरी में किसी तरीके से रोटी सब्जी बना के खिलाओ, चलो चलो मुझे जाना है, घूमने जाना है, मेरे को मेरा विजिट ड्यू है, मेरे को मॉल में जाना है, मेरे को नॉटलेस घूमने जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, उस मजबूरियों के अंदर आप भगवान को खिला रहे हैं। अब आपके मन के अंदर जो है कोई चीज नहीं है, केवल क्या है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, सेवा तो कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। तो जब हम चर्चा करते हैं हे अनुकूलस्य, जैसे कहा अभी माता जी ने कि अनुकूल मतलब जो भगवान की सेवा के प्रति अनुकूल चीजें हैं उनको ग्रहण करना, उनको एक्सेप्ट कर लेना, जैसे कि प्रसाद बनाना है, जप करना है, सत्संग करना है, बुक रीडिंग करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कीर्तन में आना है, कीर्तन सुनना है, भक्तों का संग करना है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप पूछते हो, डॉक्टर साहब दवाई, गला खराब है, ये दवा है आपकी, परहेज क्या है जी, ये परहेज है, तो आपको जो है वहां पर परहेज भी करने हैं। परहेज क्या है, रिजेक्शन ऑफ अनफेवरेबल थिंग्स, जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं, जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको वर्जित करना, उनको छोड़ देना, उनको त्याग देना, मीन्स चार नियमों का पालन करते हैं तो प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग है। भक्ति से जो आपको चीजें गिराती हैं, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन, अभक्ष चीजें हैं, तामसिक पदार्थ हैं, नशा है, गैम्बलिंग है, पर स्त्री पर पुरुष संबंध है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं इनको आप वर्जित कर देते हैं, इनको आप त्याग देते हैं, अर्थात इसमें भी बहुत सारी मुश्किलें, चाय छोड़नी बड़ी कठिन काम है, चाय नहीं छूटती प्रभु, ओहो मैंने सब छोड़ दिया, चाय नहीं छूटती प्रभु, चाय छोड़ने का तरीका बताओ आप। मैं सब कुछ कर लेता हूं, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने मांस अंडा मुर्गा मछली छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, चाय नहीं छूटती प्रभु। किसी के यहां जाओ तो चाय पीनी पड़ती है, कोई घर में आ जाए तो चाय पिलानी पड़ती है, चाय तो छूटती नहीं है। तो चाय को छोड़ना इज अ बिग तपस्या, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है, आसान काम नहीं है। तो जो चीजें भगवान की भक्ति के प्रतिकूल हैं उनका त्याग कर देना। तीसरा इसमें जो है रक्षते विश्वासो, मतलब क्या है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ओनली कृष्णा विल गिव प्रोटेक्शन टू मी। द्रौपदी को थी, प्रहलाद महाराज को थी, उत्तरा को थी। चौथा है इसमें कि आपको एक्सेप्ट करना है कि भगवान ही मेरे संरक्षक है, मेरे गार्जियन है, मेरे मास्टर है, ही इज द सुप्रीम मेंटेनर और कोई नहीं है। विश्वास केवल भगवान पे होना चाहिए और किसी पर भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो है बाएं दाएं बहुत लोगों पे विश्वास कर लेता है कि मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरे गार्जियन है और कोई नहीं है, केवल भगवान ही मेरे संरक्षक हैं और कोई नहीं है। उसके बाद है फुल सरेंडर। फुल सरेंडर क्या है कि मेरा भगवान के सिवाय और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी भगवान की सेवा करने के सिवाय और कोई इच्छा नहीं है। आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हाँ जी भगवान कृष्ण की भी भक्ति करता हूं, नहीं भगवान कृष्ण की ही भक्ति करता हूं, उन्हीं की सेवा करता हूं, ये भाव आना चाहिए। और उसके बाद छठा गुण है कि हमेशा अपने को मीक और हम्बल बनाए रखे, मैं निकृष्ट हूं, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, अमाने ना माने देने कीर्तन ये सदाए, मुझसे निकृष्ट और कोई नहीं। हम्बल सबसे ज्यादा विनम्र होना। अब प्रश्न आता है, जैसे इन्होंने कहा अनन्य भाव, कि भगवान जो है उसमें जो भक्त है उसके क्या गुण हैं, और हम एज ए भक्त हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान यहां जो है नवे अध्याय के 22वें श्लोक में बता रहे हैं, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्ता नाम योक्षेम वहामि है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूं। यहां सवाल आ रहा है अनन्य भाव का, तो व्हाट इज दैट अनन्य भाव? अनन्य भाव किसे कहते हैं? व्हाट इज दैट एक्सक्लूसिव? भाव की बात हो रही है, अनएक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव? और किसको नहीं? होम और किसको नहीं? कौन और कौन और कौन? किसको याद नहीं करना वो बताइए ना। भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होनी चाहिए। अव्याभिचारिणी, तो यहां समझना है व्याभिचार क्या होता है और अव्याभिचार क्या होगा। व्याभिचार का अर्थ है, साधारण भाषा में जब इस्तेमाल करते हैं, भौतिक संसार में शब्द इस्तेमाल करते हैं व्याभिचार का, तो व्याभिचार का मतलब होता है जब कोई स्त्री किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है, और जब कोई पुरुष किसी पर स्त्री से संबंध बनाता है तो व्याभिचारी कहलाता है। इन दोनों परिभाषाओं से निष्कर्ष यह निकलता है कि अपने को छोड़कर दूसरे के साथ जब संबंध स्थापित किया जाता है तो व्याभिचार कहलाता है। जो अपना है, जो अपना है उसको छोड़कर जब आप किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो व्याभिचार कहलाता है। तो यहां प्रश्न आता है कि सच्चिदानंद अविनाशी भगवान और उन्हीं का अंश सच्चिदानंद और अविनाशी आत्मा, मतलब जीव जो है अविनाशी है और भगवान भी अविनाशी है, यही एक संबंध है अपनेपन का। जो चीज विनाशील है वो पराई है, जो चीज विनाशील है वो पराई है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को बुला के किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है तो व्याभिचारी कहलाता है। जब आप भगवान को छोड़कर, मतलब आपका भाव जो है भगवान के प्रति न होकर दूसरी वस्तुओं के प्रति भी, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, दूसरी वस्तुओं की बात कर रहा हूं, दूसरों एवं दूसरी वस्तुओं के प्रति हो जाता है तो आप व्याभिचारी कहलाते हैं। यहां जो है भगवान ये कहते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं। मतलब अन्यता है कि आप अगर संसार से विमुख हो जाते हैं, संसार मींस इवन योर बॉडी, आपका शरीर भी संसारिक वस्तुओं में आता, विनाशील है कि नहीं? शरीर का विनाश होता है कि नहीं होता? जो शरीर का विनाशील होता है, अगर आप शरीर के बारे में भी इंटरेस्टेड हैं, यही जो है उत्तमा भक्ति के अंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करते हुए आपके प्राणों पर भी बन आए तो आपको प्राणों के बचाने की याचना नहीं करनी है। अगर आप प्राणों के बचाने की याचना करते हैं तो आप भक्ति में हैं पर उत्तमा भक्ति में नहीं, उत्तम भक्ति में नहीं। हम जो है अरुण और धौम ऋषि की कथा पढ़ते हैं, गुरु के प्रति सरेंडर था उसका, उन्होंने कहा बारिश हो रही है, खेत की मेड़ जो है वो टूट रही है, तुम जाके मेड़ को बना दो ताकि पानी फ्लो ठीक हो जाए। अरुण गया, क्या देख रहा है कि पानी बहता जा रहा है, मिट्टी रखता है, पानी मिट्टी को बहा के ले जाती है, फिर मिट्टी डालता है, फिर पानी मिट्टी को बहा के ले जाता है, खुद लेट गया, पानी रोकने के लिए खुद लेट गया। ठंड का मौसम है, बारिश हो रही है, लेटा हुआ है वहां पर। सर धौम ऋषि कहते हैं मॉर्निंग के अंदर मेरा शिष्य कहां गया? शिष्य तो मैंने रात भेजा था, काम पे लौट के ही नहीं आया। और उसको ढूंढते हुए जब जो है वो खेतों में पहुंचते हैं तो क्या देखता है? उसने अपने आप को वहां पर लिटा रखा है पानी को रोकने के लिए, अपने जान की परवाह नहीं करी उसने। कि ठंड है, मर जाऊंगा, बरसात हो रही है, सब लोग तो अपना चादर कंबल ओढ़े, रजाई ओढ़े जो है बैठे आश्रम के अंदर, और मैं यहां पर जो है वो अग्नि ताप रहे और मैं यहां बारिश में मारा जा रहा हूं। सेवा, गुरु के प्रति सेवा, भगवान के प्रति सेवा, भाव क्या है कि अपने प्राणों को बचाने की भी याचना नहीं कर रहे। अब जो है भगवान के सम्मुख हो जाना, अनन्य चिंतो, चिंतन मतलब चिंतन करना भगवान का, और किसी का चिंतन नहीं करना, संसार का भी चिंतन नहीं करना, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, बंधुगण हैं, देवी देवता भी उसी के अंदर आते हैं, किसी का भी चिंतन, अपने शरीर का भी चिंतन नहीं करना। चिंतन भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए, नो वन एल्स एक्सेप्ट मी, तेरे चिंतन में केवल मैं होना चाहिए, मैं और कोई नहीं, तब अनन्य चिंतो यंतो मान होगा। उपासना करेगा कि अर्थात किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, मुझे भगवान की सेवा से पीछे नहीं हटना है, उसके चिंतन को, भगवान के चिंतन को छोड़ना नहीं, उनके स्मरण को, उनकी सेवा को छोड़ना नहीं है। मेरे लिए मस्ट है कि मेरे को केवल भगवान का चिंतन करना है और कोई नहीं। तो तीन पार्ट्स हैं। जब हम कहते हैं कि हम जो है भगवान से युक्त हो जाते हैं, नित्य वियुक्ता नाम, तो नित्य वियुक्ता नाम के अंदर एक है अनन्यता, दूसरा है चिंतन, तीसरा है उपासना, ये तीनों शब्द इसके अंदर परिउपासते। अब आती है इसके अंदर कि भगवान कहते हैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देता हूं और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करता हूं। अप्राप्त क्या है, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या भक्ति में काम आएगा, क्या भगवान से संबंध बनाने में मुझे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, इज इट नेसेसरी, मतलब अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। वही चीज मिलेगी जो भगवान की भक्ति में सहायक है, और जो भगवान की भक्ति में सहायक नहीं है और आपके पास है वो गायब हो जाएगी, उठा ली जाएगी। मतलब जो भक्त के हित में है भगवान वही कहते हैं, भगवान वही करते हैं, भगवान आपके हितैषी हैं, सुहृद सर्वभूता नाम, आपके हृदय में बैठे हैं परंतु आपके हितैषी मित्र हैं। और जीव का कल्याण करना अर्थात जीव की रक्षा करनी या रक्षा नहीं करनी, दोनों सिचुएशन है। कब है कि जब आपके भक्त के हित के लिए जो चीज चाहिए आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसको उठा देंगे। अब आती इसके बाद चर्चा हम करते हैं, वही 26वें श्लोक की महाराज ने चर्चा करी थी, श्लोक नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्तया पृच्छति तदहम भक्त प्रत अश्नामी प्रत आत्मना। इसमें जो है ध्यान देंगे कि भक्त शब्द जो है दो जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं कि जो भी काम है अगर मुझे पत्र पुष्प फल और जल, अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन से पत्र चाहिए कौन से पुष्प चाहिए हायर कैटेगरी में, तुलसी का पत्ता ओके, साग सब्जी ओके फाइन नो प्रॉब्लम, भोग लगाया भगवान के लिए बनाया बहुत बढ़िया बात है, A1। हम लोगों ने भगवान को भुलाकर संसार के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया, यहां से बाहर निकलने के बाद ना भगवान याद नहीं आते, आते हैं प्रभु जी, क्या याद आता, फल्गु वैराग्य है, शमशान घाट में पता लगता है कि मुझे भी यहीं आना है, शमशान घाट से बाहर निकलते भूल जाते हैं कि मुझे यहां आना था, एकदम चीज आउट हो जाती है, ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि देखिए एक तो है पदार्थ और एक है एक्शन, मतलब पदार्थों के अंदर क्या है पत्र पुष्प फल और जल मुझे अर्पित करो, कैसे अर्पित करो तो 27वें श्लोक में बता दिया, यद करोशी यद सनासी यद जुहोशी तदासी यद तपस्सी कौन दे तद गुरु शुआ मदर्पणम, कि मेरे को अर्पण कर दीजिए तो तुम जो है हर प्रकार की आफत से छूट जाओगे। आफत मीन्स पुण्य कर्म है उससे भी और पाप कर्म है उससे भी, और सबसे बड़ी आफत क्या है बार बार जन्म होना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस सबसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। पर भाव कैसा चाहिए, आपकी चेतना कैसी चाहिए, यह चर्चा आ रही है। प्रत आत्मनः, प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध चेतना वाले से, अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उससे मैं पत्र पुष्प और फल और जल भी स्वीकार कर लेता हूं। आपकी कौन सा भक्त है शुद्ध चेतना वाला? अनन्य चिंतो यंतो मां, जो उसकी चर्चा हो रही है, उस भक्त की। क्या हम उस लेवल पे हैं? क्या हमारा वो प्लेटफॉर्म है? क्या हमारी चेतना शुद्ध है? क्या हम प्योर डिवोशनल सर्विस में हैं? दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है मद अर्थम, एक है मद अर्पणम। मद अर्पणम का अर्थ है कि मेरे को अर्पित कर दो, मद अर्थम का अर्थ है मेरे लिए करो। क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? कुछ फर्क है? क्या है प्रभु जी बताइए? एक एग्जाम्पल देता हूं, बात समझ में आ जाएगी, बड़ी क्लियर हो जाएगी, एकदम फंडामेंटली क्लियर हो जाएगी। आज पनीर लेते आना, बच्चा पनीर मांग रहा था, पनीर खिलाएंगे उसको। बेटे ने पनीर की डिमांड करी। आज मैं सब्जी लेने जाऊंगी, आप क्या खाओगे? बोले आज आलू गोभी बना लेना। किसके लिए बना? किसके लिए बना? हस्बैंड के लिए बना, बेटे के लिए बना। बना और भगवान को भोग लगाया। मत अर्पणम, मेरे को अर्पित कर दिया। आज पनीर लेते आना, ठाकुर जी को खिलाना है। आज बड़ा मन है, भगवान को सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाएंगे। तो किसके लिए कर रहे हो? अपने को तो फोकट में मिल रहा है ना। मन का भाव किसके प्रति है? मद अर्थम, भगवान मत, मतलब मेरे अर्थ, मेरे लिए करो। मद अर्पणम क्या है कि आपने काम किया अपने लिए, परंतु फाइनली मेरे को अर्पित करके उसके बाद इस्तेमाल किया। दूसरी सिचुएशन में आपने किया ही मेरे लिए, आप कर ही मेरे लिए रहे हो। तो आपकी चेतना में शुद्धता चाहिए। यहां ये कहा जा रहा है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वे भगवान का शुद्ध भक्त। प्योर डिवोशनल सर्विस में जब वो होगा, मतलब उसकी चेतना शुद्ध होगी। और चेतना शुद्ध में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है जो आपकी चेतना को अशुद्ध बनाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए। एक चीज है, उसका ध्यान आते ही आपकी सारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, जो आज के युग में सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट प्रिवेलेंट। ईर्ष्या, ईर्ष्या से द्वेष बनता। पहले जलन होती है, फिर घृणा होती है। पहले ईर्ष्या आती है, फिर द्वेष आता है। ईर्ष्या, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है? यही झगड़ा हो गया, यही झगड़ा हो गया, बस कबाड़ा। ये भक्त को जो है बड़ी अच्छी माला कर रहा है, बस इसकी टांग खींचो, इसको खींचना शुरू कर दिया। कोई ना कोई नुक्ता निकाल के उसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। अपने अवगुण नहीं देख रहे, दूसरे का गुण जो है उसके ऊपर आक्षेप कर रहा है। ईर्ष्या आ गई। अब भगवान कहते हैं कि जो आनंद मिलता है भाव से, अब भाव कब होता है? जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हो। अब यहां जो है एक छोटी सी चर्चा करते हैं, आपको आनंद आएगा। अभी 5 मिनट और ले लूं, 9 बज गए वैसे, विद ऑल ड्यू परमिशंस। भगवान कहते हैं कि हमको कैसा पत्र और कैसे पुष्प चाहिए, किस प्रकार के पत्र चाहिए, किस प्रकार के पुष्प चाहिए, किस प्रकार के फल चाहिए, और किस प्रकार का जल चाहिए, मतलब एक साधारण जल पत्र पुष्प जो के फाइन नो प्रॉब्लम, पर थोड़ा और एडवांस हो, थोड़ा और एडवांस होंगे तो हमें किस तरह के पुष्पों की आवश्यकता है, किस प्रकार के पत्रों की आवश्यकता है। पत्र कहते हैं लीफ को। पालक अर्पित कर दी, तुलसी अर्पित कर दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है। भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर कि जो भौतिक संसार है ये, इसके अंदर जो पत्ते हैं वो क्या है, चंदासी यस्य पर्णानि, वेदों की ऋक्षाएं, वेदों के श्लोक, शास्त्र, ठीक है। तो भगवान कहते हैं जब आप मेरे को पत्र अर्पित कर रहे हो इस कलयुग के अंदर, तो आपके लिए क्या है कि आप शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए, जो छंदासी इस पर्णानि, जो जो छंद हैं, जो श्लोक हैं, ये क्या है, ये पत्तों के समान है। जैसे वृक्ष है उसकी शाखाओं में पत्ते खूबसूरत लगते हैं, उससे खूबसूरत फिर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो आप जब जो है भगवत गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, ईशोपनिषद पढ़ते हो, तो श्रील प्रभुपाद ने इतना सिंपल कर दिया है, जब आप इनको समझते हैं, इनको सुनते हैं, और सुनने आप श्रवण किस लिए कर रहे हो, भक्ति का रूप है ना, भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है, सुनना, सुनते किसको, अभी तो श्लोकों की चर्चा हो रही है, शास्त्र की चर्चा हो रही है, श्लोकों के अनुवाद की चर्चा हो रही है। तो इसीलिए जो है जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पत्तों की माफिक गिना गया है, शास्त्रों को पत्रों, पुष्पों, पत्रों की माफिक गिना गया है। तो आप जब जो है अपने आप को एक हम्बल सर्वेंट मानते हो भगवान का, तो आपको इन पत्तों को, इन पत्रों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, अर्थात इनको सुनना चाहिए रेगुलरली। इसलिए कहा है नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत का सेवन करना। आपको ईशोपनिषद पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, चेतन चरितामृत पढ़नी है, ये होगा कि आप भगवान की सर्विस कर रहे हो, अर्थात भगवान को पत्र अर्पित कर रहे हो। अब आती है इसके बाद बात पुष्पम, फ्लावर। बहुत तरह के फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं, महंगे से महंगे ऑर्किड्स और उससे भी महंगे फूल आते हैं, ट्यूलिप्स आते हैं, उनको भगवान को अर्पित करते हैं। पर हमें जो है अलंकार के रूप में 8 फूलों की चर्चा होती है, अलंकारिक रूप में पंचरात्र के अंदर मेंशन्ड है, बहुत लंबा श्लोक है, श्लोक ना करके आपको सिर्फ फूलों के बता देता हूं कि पहला फूल जो है उसको कहा जाता है प्रथमम है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, तो आप भगवान को एक फूल अर्पित कर रहे हैं। दूसरा फूल है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। तीसरा फूल है कंपैशन, सब प्राणियों के लिए, सब प्राणियों के लिए आपके मन के अंदर करुणा है, आप किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते। चौथा फूल है टॉलरेंस, सहिष्णुता, तरोरपि सहिष्णुना, आपको सहिष्णु होना चाहिए, आपको पेशेंस होनी चाहिए, आपको टॉलरेंस होनी चाहिए। पांचवा फूल है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अर्थात दिव्य ज्ञान, अर्थात इन शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना, समझना, अपने भी ज्ञान के अनुसार चलना और इस ज्ञान को बांटना, बांटने में प्रवचन, कथा अरेंज करनी, उसके लिए प्रोग्राम्स करने, वक्ता को बुलाना और उसके साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशंस करनी, ये सारे जो है आपके ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में आते हैं। छठा फूल है ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, तपस्या, अब तप कर रहे हैं, सुबह उठना, सारे कार्य करने, भक्ति के सारे कार्य करने, भगवान को भोग लगाना, चार नियमों का पालन करना, सब चीजें अपना समय निकाल के जो है, जो अपना जो भौतिक संसार में एंजॉय करने का समय था उसको छोड़ के उसको आध्यात्मिक संसार में लगाना, ये सारी तपस्या। सातवां फूल है भगवान पे अपने मन को केंद्रित करना, मेडिटेशन, अनन्य चिंता, मेरे चिंतन में केवल भगवान रहे, उस लेवल तक अपने को लेके जाना। और आठवां फूल है सत्य, अर्थात हमेशा सत्य का पालन करना और वही बोलना जो शास्त्रों में लिखा है, उसके अलावा कोई मनगढ़ंत बात नहीं। जैसे प्रभुपाद जी आज परपट में कह रहे हैं कि आपको किसी अवैष्णव के मुख से इन ग्रंथों का उपदेश नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है मनगढ़ंत बातें बहुत होती हैं। ये शरीर कुरुक्षेत्र है, पांच इंद्रियां पांच पांडवों के समान है, हृदय कृष्ण है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें लोग करते हैं, टोटल नॉनसेंस। तो इसके बाद जो है आठ तरह के फूल हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय हैं और जो इनको भगवान को अर्पित करता है भगवान उसे प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करता है। इसके बाद है फलम, कि आपको कौन सा फल देना है, सेब संतरा केला अनार अमरूद तो देना ही है, दैट इज देयर, पर इसके अलावा जो है भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं यू ऑफर द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज टू मी, मतलब अपने कार्यों को मुझे समर्पित कर दो, मतलब मद अर्थम कि मेरे लिए ही कार्य करो और किसी के लिए नहीं करें। आप अपने परिवार की रक्षा करो, परिवार की देखरेख करो, जॉब करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, पर किसके लिए करो, मेरे लिए करो। केंद्र में कौन रहना चाहिए, केवल मैं रहना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। और फिर जो भी आप कार्य कर रहे हो उन कार्यों के फलों के प्रति आपकी कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, कोई राग नहीं चाहिए कि मुझे इसका फल मिलना, मैंने किया था मुझे तो फल मिला नहीं, अरे मैंने तो 11,000 दिए थे डिवोटी तो मेरे को माला पहनाने नहीं आया, मेरे को वेलकम नहीं किया है? मेरे को तो अंदर जाके माला पहनानी चाहिए थी, मेरा स्वागत करना चाहिए था, मेरा तो स्वागत ही नहीं किया। मैंने 11,000, मैंने 21,000, मैंने 51,000 दिए। वो जो कामना है वो कामना नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात क्या कही कि सारे शास्त्रों का राइपेंड फ्रूट जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम जो है उसको आपने पढ़ना है, सुनना है, समझना है, उसको अपने में इम्बाइब करना है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अर्थात उस फल को जो है आपने भगवान को अर्पित करना। जब तक आप जो है इस लेवल पे नहीं आएंगे तब तक आप अनन्य चिंतो यंतो माम के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अब लास्ट बात आती है वाटर, पानी, दूध फल के जूस वगैरह 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 सब पानी में आते हैं, ये तो भगवान को देने ही हैं। इसके अलावा आपको जो है क्यों और क्या देना है, और इससे उच्च पानी आप क्या दे सकते हो, आंसू। क्या है कि आप जो है जब अपने आप को प्यूरिफाई कर लेंगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जब जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जब इनकी चर्चा होगी, जब इनको श्रवण करेंगे या इनको लोगों को सुनाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। वो भाव है आंसुओं का आना, तो उन आंसुओं को जो है आपने पान जल के समान भगवान के लिए करना है, भगवान को अर्पित करना। झूठे आंसू नहीं, ग्लिसरिन लगा के नहीं, नौटंकी वाले आंसू नहीं कि पैसे लिए कथा करी और आंसू बहाए लोग भाव में आ गए, हाँ बड़े अच्छे भक्त हैं, हाँ सिर्फ 2,00,000 रुपया लेते हैं कथा करने का, 2,00,000 में आंसू बहाए तो क्या प्रॉब्लम है, जितने मर्जी बहा लो। अगर कोई आपसे कहे कि 2,00,000 लेके आपको रोना है, हाँ बोले भैया मैं सारा दिन रो सकता हूं, पैसे तो लाओ, मुझे क्या दिक्कत है रोने में, पैसे मिलने हैं, नो Not at all। क्या है कि आप भगवान की भक्ति करते हुए ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, व्याभिचार नहीं है, सांसारिक संबंध नहीं है, केवल आपका संबंध भगवान के साथ है, भगवान के प्रति आप समर्पित हो, भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो, और फिर जो है जब आप कथाएं सुनते हो, भागवतम सुनते हो, भगवद्गीता सुनते हो, चेतन चरितामृत सुनते हो, ईशोपनिषद सुनते हो, नेक्टर इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत सुनते हो, जैसे जैसे आप ग्रंथों का सुनना करते हो या उनको बोलते हो, उनका प्रचार करते हो, तो आपकी आंखों से और नॉर्मली नेचुरली अपने आप ही कुदरती तौर पे आपके आंसू बहते हैं, आपका कला रूंध जाता है, आपसे बोला नहीं जाता है, वो जो है आंसू। जब आप जो है आप उन आंसुओं को कम कर लेंगे, इसका मतलब है आप भगवान के प्रति समर्पित, आप भगवान की कथा में आनंद ही नहीं आ रहा, यू आर नॉट एंजॉइंग इट एट ऑल, आपको कथा में स्वाद ही नहीं आ रहा। जब आप कथा सुनते, मैं लिटरली देखा है, मैं अभी मेरठ में लेक्चर देने गया तो माताएं बैठी हुई थी सामने, जैसे जैसे लेक्चर भगवद्गीता पे चल रहा था और आप लिटरली वॉचिंग उनके आंसू, लंबे लंबे आंसू बह जाते। मैंने बाद में पूछा माता इतना रो क्यों रही हो राजपुत्र एक ही था, वही जब भगवान की कथा सुनते हैं तो आंसू नेचुरली आ जाते, समझ में नहीं आता क्यों आ रहे हैं। सो आपको जो है डिवोशनल सर्विस के लिए भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप उसमें चलते जाओगे, जैसे जैसे उसमें बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको आनंद आता जाएगा। यहां भगवान कहते हैं कि आपको भक्ति उभृतम भक्ति भाव से अर्पित करना, भक्त्या भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से। भक्ति भाव किसमें आएगा, भाव किसमें आएगा, भाव आएगा जिसकी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध नहीं होगी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपको भगवान के लिए कार्य करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। भगवान के प्रति समर्पित करना, मैंने पहले भी एक बार यहां कथा बताई थी, आज फिर बताता हूं कि भक्त जो है जिसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, कुछ नहीं था, वो भगवान की सेवा करना चाहता था, तो उससे उसने पूछा जी भगवान की सेवा कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा मानसिक रूप से किया कर, मन से किया कर, भगवान तेरे को मिल जाएंगे। मन से सेवा करनी शुरू कर दी, मन से भोग बना रहा है, मन से बना रहा है, मन से सारे कार्य कर रहा है, 10-11-12 महीने हो गए, कहता है भगवान तो प्रकट नहीं हुए, मुझसे कह दिया मन से सेवा किए जा, कैसी सेवा, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, फिर भी चलो करता हूं, कोई बात नहीं, मेरे को तो काम सेवा करना ही है, भगवान के दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं, हो जाएंगे। इच्छा दर्शनों की, और कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं है कि मेरे को पैसा मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा है, कि भगवान के दर्शन हो जाए। तो एक दिन जो है भगवान को नींबू पानी बनाने का मूड आ गया, उसका भगवान को नींबू पानी पिलाते हैं, तो उसने जो है मन से एक लोटा लिया, लोटे के अंदर उसने चीनी डाली, और चीनी डाली तो लगा चीनी ज्यादा हो गई है, तो वापस निकालने लग गया, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, वो तेरा कौन खर्चा हो रहा था, तू बिल्कुल ज्यादा मीठा पी लेता ना, तेरा कौन सा खर्चा हो रहा था, तू वापस निकाल ला, अरे एक मुट्ठी ज्यादा आ गई तो मैं ज्यादा मीठा पी लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, तूने कौन सा खर्चा किया, बाजार से तो लाया नहीं। तो जब वो एक कॉन्टिन्यूअस सततम, मतलब एक उसके मन के अंदर भगवान के सिवाय और कुछ नहीं, भगवान ही भगवान है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ एक से अनन्य चेता सत्तम यो, हमेशा मन के अंदर चिंतन में भगवान को रखिए और किसी को नहीं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।